और अब यहां से एक बहुत खूबसूरत बात, इन्नहुम याति रब्बहु मुजरिमा, हकीकत यह है कि जो मुजरिम बनकर अपने रब के हजूर हाजिर होगा, इसके लिए जहन्नुम है जिसमें वो ना जिएगा ना मरेगा, और जो इसके हजूर मोमिन की हैसियत से हाजिर होगा जिसने नेक अमल किए होंगे, ऐसे सब लोगों के लिए बुलंद दर्जे हैं, सदाबहार बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और इनमें वो हमेशा रहेंगे, और ये जजा है उस शख्स की जो पाकीज़गी इख्तियार करे। अल्लाह हमें पाक कर दे, अल्लाह हमारा तज़किया कर दे, हमें अंदर बाहर से बिल्कुल साफ सुथरा कर दे। वलक़द ओहैना इला मूसा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही की कि अब रातों रात मेरे बंदों को लेकर चल पड़ो और इनके लिए समंदर में से सूखी सड़क बना लो, तुझे किसी के पीछा करने का जरा खौफ ना हो और ना समंदर के बीच से गुजरते हुए डर लगे। अब एक और मोजा, सुभान अल्लाह, क्या डायनेमिक किस्म की लाइफ होती थी नबियों की, हर दिन नई बातें। और यही चीज मैंने आज उन लोगों से भी सुनी और ऑब्जर्व भी की और अल्हम्दुलिल्लाह इसको सफर भी किया है कि दीन के साथ आपका अगर ब्राह रास्त इस तरह का इंटरेक्शन शुरू हो जाता है ना कि जिसमें आप दावा फील्ड में आ जाते हैं, आपकी जिंदगी में हर रोज नई कहानी है, यकीन करें। हर दिन कोई मैसेज, कोई किसी का कहीं ना कहीं छोड़ा हुआ पैगाम, किसी एडमिन के थ्रू, किसी के खुद, जो ये दिल को खुशी और सुकून देता है कि ये कुरान उनके दिल को कैसे बदलता है। और बहुत कम मैसेज चेक कर पाती हूँ आजकल, तो बिल्कुल ना होने के बराबर, लेकिन मैंने देखा है कि अल्लाह सुना देता है। 2 दिन पहले मैं बहुत थकी हुई थी तो वो जरा सा आंखें बंद करके बैठी, एक बिल्कुल नया नंबर था, मैंने कहा अल्लाह जाने किसी ने दिया होगा, तो मैंने उनका मैसेज प्ले किया, खुद ही सुन रही थी। यकीन करें कि मेरी सारी थकन दूर हो गई, तबीयत पे कुछ बोझ था वो दूर हुआ, मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर सिर्फ इस एक सिस्टर की ये गवाही काफी है ना दौरा कुरान 2017 के लिए, तो मेरा काम हो गया। बाकी अब ये जितने आप सुन लें, दूसरे सुनेंगे, ये नफिल है। कभी एक बंदे को 1 साल में फायदा होता है, आपको पता है? हर साल ऐसे ऐसे तोहफे मिलते हैं दौरे कुरान के बाद हमें, आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। तो ये चीजें बंदे को इनर्जी देती हैं, और मैं सोचती हूँ हर दिन है एक्साइटमेंट। हर रात मेरे हस्बैंड जब भी हम सोने लगे पूछते हैं कल का क्या प्लान है, फिर सुबह उठ के फिर पूछते हैं आज का क्या प्लान है, फिर पूछते हैं। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ये पढ़ने पढ़ाने में ना आती तो हमारी ज्यादा से ज्यादा बातें क्यों नहीं थी, आज क्या पकाना है तुमने, सुबह क्या पकाओगी, और अल्लाह जानता कभी आज तक घर में इस मौजू पर सवाल जवाब हुआ ही नहीं है। फिर जब मैं घर जाती हूँ, जाहिर है कि इतना वक्त से अलग हुए होते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, फिर मेरी ख्वाहिश होती है पूरे दिन की अच्छी अच्छी बातें जिसमें यानी उनको भी इंजॉयमेंट मिले और उनको भी खुशी मिले, क्योंकि वो भी तो मेरे साथ है ना, कि उनकी कोशिश से अगर किसी को फायदा हो रहा है तो मैं उनको सुनाती हूँ। और हर दिन मेरे पास नई स्टोरीज होती हैं, कभी कुछ, अब वो उनको उससे कितना इंटरेस्ट है, मैं उनको किस तरह सुनाती हूँ ये एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इस वक्त जो बात समझाना चाह रही है ना, इफ यू आर गेटिंग बोर्ड, अगर आप बोर हो रहे हैं ना, कुछ लोगों को अगर इश्यू है, कम ऑन, ये मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि आप हमारे हाथ में हाथ दे दें, फिर आप कभी बोर नहीं होंगे, और वो कहने दें कि बोर होने का वक्त ही नहीं रहेगा। वजह क्या है कि अल्लाह की इतनी मखलूक है, इतनी जॉब ऑप्शंस हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसकी बात करें, उसकी करें, उससे मिलें, उधर अब उस बंदे की दीन की बात करें, अच्छा उसके साथ करें, तो मुसलमान 24 घंटे भी बिजी रह सकता है। आज मुझे हैरत होती है उन लोगों पे जो कहते हैं बोर हो रहे हैं, वक्त नहीं गुजरता, सुस्तियों के मारे हुए, नहीं, आप एक दफा इस चीज को एंजॉय करके देखें, इतनी एनर्जी मिलेगी आपका अगली दफा फिर वो काम करने को दिल करेगा। खैर, अब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बता दिया कि फिक्र ना करना, फिरौन ने तुम्हारा पीछा करना है, और वही हुआ, फतबाहुम फिरौन भी जुनूदी ही, पीछे से फिरौन अपने लश्कर लेकर पहुंचा और फिर समंदर इन पर छा गया जैसा कि छा जाने का हक था। फिरौन ने अपनी कौम को गुमराही किया था, कोई सही रहनुमाई ना की थी। अब इधर मुझे थोड़ी सी हंसी क्यों आई, आपके इस मुल्क में आने के लिए जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो बस में आई थी, उसके बाद जब भी मैं आई तो मैं लंदन के रास्ते आई तो यूरो ट्रेन से आई। आप में से कई लोग लंदन यहाँ से जा चुके होंगे, मुझे साथियों ने पहले ही बता दिया कि ये ट्रेन कुछ वक्त बीच में समंदर के अंदर से गुजरती है। अब मैंने जब अपनी अम्मी को बताया, वो तो वहां से आयतुल कुर्सी पढ़ पढ़ के फूंक रही, तो मैं उस दिन क्या सोच रही थी, यानी मैं 2-3 दफा बल्कि इससे भी शायद ज्यादा दफा उसी ट्रेन के थ्रू हम आए आपके इस मुल्क में, तो मैं उस पूरा तकरीबन 35-40 मिनट का वो ड्यूरेशन होता है, तो मैं यह आयत सोचती थी कि अल्लाह मूसा भी तो तेरे हुक्म पे समंदर के अंदर से गुजरे थे, उनका ईमान इतना था कि वो खुले पानियों में गुजर के चले, हमें यकीन है कि इन्होंने यूरो ट्रेन बनाने से पहले कुछ ना कुछ तो इंतजाम किए होंगे। बहुत मैं इमोशनल होती हूँ जब वहाँ से गुजरती हूँ, बिल्कुल इस मौके को याद करती हूँ कि अल्लाह ने देखिए पानी के अंदर से गुजार दिया, और बड़ा जोश भी था और मोहब्बत भी थी अल्लाह पे कि अल्लाह वो कहते ना कि दश्त तो दश्त सहरा भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, कल हमारी कोई नेकी कबूल कर लेना कि ये इस तरह से भी गुजर गए थे, ये भी कर गए थे, तो इंजॉय किया करें जिंदगी में। कभी पैदल चलना पड़े कहा करें अल्लाह आज पैदल चलने का अजर ले रही हूँ, कभी गाड़ी पे पेट्रोल डालने अल्लाह से के अल्लाह आज पेट्रोल डालने के पैसों का अजर ले रही हूँ, कल किसी की राइड लेकर जाना पड़ा कि अल्लाह आज देखो तो कभी नहीं किसी से कहा कुछ लेकिन तेरे रास्तों के लिए ले रही हूँ, एवरी डे इज न्यू एक्सपीरियंस, और आप फिर इंजॉय करेंगे इसको इंशाल्लाह। दूसरी बात देखिए कि फिरौन था तो लीडर लेकिन उसने मिस गाइड किया, इसको हाईलाइट कर लें। एक जुमला कहीं पढ़ा था, डोंट फॉलो मी आई एम लॉस्ट, कि मेरा पीछा ना करना मैं तो रास्ता खोया हुआ। आज हम मुसलमानों में से बहुत बड़ा एक इशू क्या है, हम भटके हुओं के पीछे चल रहे हैं। फिरौन लीडर था लेकिन हर लीडर याद रखिए कि हिदायत देने वाला नहीं होता बल्कि वो मिसलीड करने वाला भी होता है। अब आगे बनी इसराइल का एक नया दौर, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और तूर के दाई जानेब तुम्हारी हाजिरी के लिए वक्त मुकर्रर किया और तुम पर मनो सलवा उतारा, खाओ हमारा दिया हुआ पाक रिस्क और इसे खाकर सरकशी ना करो। आपके मेरे लिए भी यही हुक्म है, खाओ पाक रिस्क लेकिन उसके बाद नाफरमानी नहीं करनी वरना तुम पर मेरा गजब टूट पड़ेगा और जिस पर मेरा गजब टूटा वो फिर गिर कर ही रहा, अलबत्ता जो तौबा कर ले और ईमान लाए और नेक अमल करे फिर सीधा चलता रहे उसके लिए मैं बहुत दरगुजर करने वाला हूँ। ए अल्लाह तू हमें भी सीधा चला और अल्लाह तू हमारे गुनाहों पर भी दरगुजर फरमा। और क्या चीज तुम्हें अपनी कौम से पहले ले आई है मूसा, इसने अर्ज किया वो बस मेरे पीछे आ ही रहे हैं, मैं जल्दी करके तेरे हजूर आ गया हूं ऐ मेरे रब ताकि तू मुझसे खुश हो जाए। ये किसकी बात है, वक्त से पहले निकलकर आकर यहां बैठकर सुनने में एक अजीब मजा होता है। माशाल्लाह मैं इससे आप सबसे बहुत खुश हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि आप में से 90% लोग वक्त से पहले बैठे होते हैं, अल्लाह करे आप हमेशा हर नेकी में आगे ही रहें। फरमाया अच्छा तो सुनो, हमने तुम्हारे पीछे तुम्हारी कौम को आजमाइश में डाल दिया और सामरी ने इनको गुमराह कर डाला। मूसा अलैहिस्सलाम सख्त गुस्से और रंज की हालत में अपनी कौम की तरफ पलटे, जाकर इसने कहा मेरी कौम के लोगों क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छे वादे नहीं किए थे, क्या तुम्हें दिन लग गए या तुम अपने रब का गजब ही अपने ऊपर लाना चाहते हो कि तुमने मुझसे वादा खिलाफी की। उन्होंने जवाब दिया हमने आपसे वादा खिलाफी कुछ अपने इख्तियार से नहीं की, मामला ये हुआ कि लोगों के जेवरात के बोझ से हम लद गए थे और हमने बस इनको फेंक दिया, फिर इसी तरह सामरी ने भी कुछ कर डाला और इनके लिए एक बछड़े की मूरत बनाकर निकाल लाया जिसमें बैल की सी आवाज निकलती थी, लोग पुकार उठे यही है तुम्हारा खुदा और मूसा, मूसा का खुदा, मूसा उसे भूल गया, नाउज़ुबिल्लाह। क्या वो देखते ना थे कि ना वो इनकी बात का जवाब देता और ना इनके नफा नुकसान का कुछ इख्तियार रखता है। हारून अलैहिस्सलाम मूसा के आने से पहले ही इनसे कह चुके थे कि लोगों तुम इसकी वजह से फितने में पड़ गए हो, तुम्हारा रब तो रहमान है बस तुम मेरी पैरवी करो और मेरी बात मानो, मगर उन्होंने इनसे कह दिया हम तो इसी की परस्तिश करते रहेंगे जब तक कि मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पास वापस ना जाए। अगर यहां देखें तो हमें इस सूरत में से जो काबिले तकलीद शख्सियत नजर आती है वह हारून अलैहिस्सलाम की है। आप देखिए कि अंबिया कराम रोशनी के मीनारे होते हैं, हिदायत की तरफ बुलाने वाले होते हैं। हजरत हारून का किरदार यहाँ बहुत खूबसूरत है, उन्होंने फितने को बचा लिया, फितने में यानी कह लीजिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनको जो जिम्मेदारी देकर गए थे उसको उन्होंने बड़ी हिकमत से निभाया। और यहाँ ये भी पता चलता है कि जब इंसान अपनी जगह से हटे तो पहले उस जगह पर किसी दूसरे को फायज करे ताकि ये ना हो कि पीछे से बहुत बड़ा फितना हो। और हारून अलैहिस्सलाम अगर ये समझदारी ना करते तो बनी इसराइल दो फिरकों में बंट चुकी होती। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें भी ऐसी हिकमतें दें कि लोगों को जोड़े रखें। याद रखिए जो सबसे मुश्किल काम होता है ना लीडर का वो लोगों को जोड़े रखना होता है। दीन के काम में कहीं पत्थर जैसे सख्त लोग भी आएंगे मजबूत स्ट्रांग, और कहीं रेत जैसे भुरभुरे भी आएंगे, और कहीं चूने जैसे गोरे भी होंगे, और कहीं लकड़ी जैसे भी होंगे। इन सब की जरूरत होती है, ये अल्लाह का फैसला है। क्योंकि घर बनाते आप सिर्फ ईंटों से घर नहीं बनता, दो ईंटों को जोड़ने के लिए नरम चीज भी चाहिए होती है। बिल्कुल इसी तरह से जो शख्स दूसरों की खैर से फायदा ले ले, सख्त तो आओ, हमें सख्त चीज की भी जरूरत है। तुम बोल्ड हो, तुम भी आओ। तुम बोल सकते हो, तुम सुन सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम चल सकते हो, तुम खाना पका सकते हो, तुम बच्चों को देख सकते हो, ये सब मिलते हैं तो फिर अल्लाह के काम होते हैं। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने लोगों को जोड़े रखा। जैसे एक माँ अपने चार बड़े तेज तरार बच्चों को आखिर जोड़ ही लेती है, और जैसे माँ घर में नहीं होती और अब्बा जी घर होते हैं माशाल्लाह, तो घर जाए तो ये नहीं पता चल रहा होता कि ज्यादा परेशान बच्चे हैं कि बाप है। अल्लाह ने माँ को ये मिजाज दिया, रोते बच्चे का मुंह भी चूम लेगी, जिसकी गलती है उसको थप्पड़ भी मार लेगी, दूसरे को प्यार भी कर लेगी। ये काम आना चाहिए। अगर हमने आज उम्मत मुस्लिमा को ऊपर पहुंचाना है, इनकी एक से चाहिए, तो सब तरह के लोगों के टैलेंट से फायदा उठाना है। वो है बुरा, आपको क्या लगे, आप उसकी अच्छाई ले लीजिए, फिर इंशाल्लाह खैर होगी। फिर इसके बाद आप देखिए मूसा अलैहिस्सलाम की जवाबदेही का अंदाज थोड़ा सा सख्त है, लेकिन यहां से भी आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को इस काम की संजीदगी का कितना ज्यादा एहसास है कि भाई से पूछने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम कौम को डांटने के बाद हारून अलैहिस्सलाम की तरफ पलटे और बोले, हारून अलैहिस्सलाम, आपने जब देखा था कि ये गुमराह हो रहे हैं तो किस चीज ने आपका हाथ पकड़ा था, यदि आप आगे बढ़कर इनको रोक क्यों ना सके, और आपने इनको रोका क्यों नहीं। قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي, यहां से आप देखिएगा हजरत हारून का कितना खूबसूरत जवाब है। मूसा ने क्या कहा कि आपको किस चीज ने रोका था इस बात से कि मेरे तरीके पर अमल ना करो, आपने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की। हारून अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया है, मेरी माँ के बेटे। इसको हाईलाइट करें, जब देखें एक साथी को गुस्सा आया हुआ ना, तो फौरन आप उसको प्यार के ताल्लुक से जोड़ें, ओ मेरे कुरान के साथी, ओ मेरी दीन की बहन, ओ मेरी फलां, आप देखिएगा इससे सारा गुस्सा दूर हो जाएगा। मेरी दाढ़ी ना पकड़, ना मेरे सर के बाल खींच, मुझे इस बात का डर था कि तू आकर कहेगा कि तुमने बनी इसराइल में फूट डाल दी और मेरी बात का पास ना किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और सामरी तेरा क्या मामला है। उसने जवाब दिया, मैंने वो चीज देखी जो इन लोगों को नजर ना आई, बस मैंने रसूल के नक्शे कदम से एक मुट्ठी उठा ली और इसको डाल दिया, मेरे नफ्स ने मुझे कुछ इसी तरह से सुझाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा तू जा, अब जिंदगी भर तुझे यही पुकारते रहना है कि मुझे न छूना, और तेरे लिए बाज परस का एक वक्त मुकर्रर है जो तुझसे हरगिज न टलेगा, और देख अपने इस खुदा को जिस पर तू रिझा हुआ था, इसे अब हम जला डालेंगे और रेजा रेजा करके दरिया में बहा देंगे। लोगो, तुम्हारा खुदा तो बस एक ही अल्लाह है, जिसके सिवा कोई और खुदा नहीं, हर चीज पर इसका इल्म हावी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बछड़े को क्यों जलाया, किसी म्यूजियम में रख लेते, फिर टिकट रखते, फिर लोग देखने आते, फिर ये कहते हमारे पास बहुत सारे नवादरात हैं। लिखिए, जिस चीज से गुनाह की याद आए उसको खत्म कर देना चाहिए। आज एंटीक के नाम पे, कल्चर की हिफाजत के नाम पे शिर्क के असरात तक जमा किए जाते हैं। बस दफा इंसान नेकियों की कोशिश करता है, अल्लाह मौका देता है, वो कर लेता है। आपका थोड़े दिन बाद जोश उतरा, जो चीज रखी होती है थोड़े दिन बाद दोबारा वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। तो अमल की बात लिखी है, जब एक चीज को दिल से निकाल दिया ना, उसको घर से भी निकाल दें, उसको अपनी नजरों से दूर कर दें। वजह, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब ये किस्सा पूरे करने के बाद अल्लाह ताला अपने नबी को फरमाते हैं, ऐ नबी, इसी तरह हम पिछले गुजरे हुए हालात की खबरें आपको सुनाते हैं, और हमने खास अपने हाथ से तुमको एक जिक्र यानी दरसे नसीहत अता किया है, जो कोई इससे मुंह मोड़ेगा वो क्यामत के रोज सख्त बारे गुनाह उठाएगा, यानी इस किताब से मुंह मोड़ने वाले गुनाह का बोझ उठाएंगे, और ऐसे सब लोग हमेशा इसके वबाल में गिरफ्तार रहेंगे, और क्यामत के दिन इनके लिए इस जुर्म की जिम्मेदारी का बोझ बड़ा तकलीफ दे होगा, इस दिन जबकि सूर फूका जाएगा, और हम मुजरिमों को इस हाल में घेर लाएंगे कि इनकी आंखें दहशत के मारे पथराई हुई होंगी, और आपस में चुपके चुपके कहेंगे, दुनिया में मुश्किल ही से कोई 10 दिन तुमने गुजारे होंगे, हमें खूब मालूम है कि वो क्या बातें कर रहे होंगे। हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त इनमें से जो ज्यादा मुख्तात अंदाजा लगाने वाला होगा वो कहेगा, नहीं तुम्हारी दुनिया की जिंदगी बस एक ही दिन की जिंदगी थी। सारी जिंदगी जिन चीजों के पीछे खपते रुलते रहे, वहां लगेगा ओनली वन डे लाइफ। एक दिन कितना को लंबा होता है, आजकल लंबे दिन है फिर भी गुजर ही जाते हैं ना, रुकता तो नहीं है। तो कितना ना समझ है वो शख्स जो एक दिन की जिंदगी के लिए ना खत्म होने वाली आखिरत को खत्म कर दे। अल्लाह ताला आपकी मेरी इसलाह फरमा दे। ये लोग तुमसे पूछते हैं आखिर इस दिन पहाड़ किधर चले जाएंगे, कहो मेरा रब इनको धूल बनाकर उड़ा देगा और जमीन को ऐसा हमवार और चटियल बना देगा कि इसमें कोई बल और सिलवट तुम ना देखोगे। इस रोज सब लोग मुनादी की पुकार पर सीधे चले आएंगे, कोई जरा अकड़ ना दिखा सकेगा और आवाजें रहमान के सामने दब जाएंगी। एक सरसराहट के सिवा तुम कुछ न सुनोगे, उस रोज शिफात कुछ कारगर न होगी इल्ला ये कि किसी को रहमान इसकी इजाजत दे दे और इसकी बात को सुनना पसंद करे। आप देखिए कि कयामत का जो मंजर होता है ना, उसको सोचकर इंसान किस तरीके से कांप जाता है। और आपने शायद फील किया कि नहीं कि सूरत तौहा में हर थोड़ी आयतों के बाद यक्षा और कयामत की बात, इन आयतों की तिलावत सुनते बिल्कुल खशियत में, चाहे आंखें बंद कर ले चाहे कुरान के तर्जमे पे नजर रखें, लेकिन शऊर को बेदार करें कि वहां क्या हाल होगा उस दिन।
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا
अल्लाह ताला हमें उस दिन की तैयारी करने वाला बना दे। और हकीकत यह है कि अल्लाह ताला को हर बात की खबर है, इसीलिए फरमाया आयत 110, यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतून बिही इल्मा। वो लोगों का अगला पिछला सब हाल जानता है और दूसरों को इसका पूरा इल्म नहीं। लोगों के सारे इस हय्युल कय्यूम के आगे झुक जाएंगे, ना मुराद होगा जो उस वक्त किसी जुल्म का बारे गुनाह उठाए हुए हो और किसी पर जुल्म या हक तलफी का खतरा न होगा इस शख्स को जो नेक अमल करे और वो मोमिन भी हो। वकज़ालिक अंज़लनाहु कुरआनन अरबिया, और नबी इसी तरह हमने इसे कुरान अरबी बनाकर नाजिल किया और इसमें तरह तरह से तंबीहात की हैं, शायद कि ये लोग कजरवी से बचें या इनमें कुछ होश के आसार इसकी बदौलत पैदा हों। यहाँ देखिए कुरान के साथ ही जो बात कह दी गई कि कुरान पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि कौन सा रास्ता टेढ़ा है, और होश भी कुरान पढ़ने के बाद ही आता है। अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे। बस बालो बरतर है अल्लाह बादशाह हकीकी, और देखो कुरान पढ़ने में जल्दी ना किया करो जब तक कि तुम्हारी तरफ इसकी वही तकमील को ना पहुंच जाए, और दुआ करो रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ परवरदिगार मुझे मजीद इल्म अता फरमा। पढ़िए शौर से ये दुआ, अब मांगिए इसको शौर से। आप देखिए पढ़ना और होता है मांगना और। हम दुआएं पढ़ते हैं या हम दुआएं सीखते हैं, दुआएं मांगी जाती हैं। पहले तो गौर कीजिए क्या मांगा जा रहा है। इल्म, नबी को कहा जा रहा है कहिए इल्म और चाहिए, हम क्या मांगते हैं। रब्बी जिदनी मालन, रब्बी जिदनी औलादन, रब्बी जिदनी लिबासन, सारा दुनिया का माल मांगते हैं। مانگنے کی چیز ہے. مانگیے ذرا اس رمضان میں اللہ سے علم. کتنے لوگ اب علم دوست بنتے جا رہے ہیں. دل چاہتا ہے کہ بس میں اور میری کتابیں. یقین کریں بندہ مس کرتا ہے کبھی کبھی, جب بہت ہی کچھ سوشلائزنگ ہونے لگ جائے نا تو دل کرتا ہے کوئی اکیلے چھوڑ دے, اب میں ذرا اپنی کتاب کھول کے بیٹھ جاؤں. تو چلیے لکھیے پھر, علم میں اضافہ کیسے ہوتا ہے. علم کے پانچ درجے ہوتے ہیں. نمبر ایک, خاموش رہنا. دوسرا, توجہ سے سننا. تیسرا, جو سنے اسے یاد کیجیے. چوتھا, اب اس پر عمل کیجیے. اور پانچواں, اس کو دوسروں تک پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا علم بڑھا دے, عمل والا. لیکن علم کو بڑھانے کا ایک سب سے خوبصورت طریقہ سیکھے ہوئے پہ عمل. روایت میں آتا ہے کہ علم اپنے پیچھے عمل کو ڈھونڈتا ہے. سفیان ثوری ایک محدث تھے, ان کا قول ہے علم عمل کو ڈھونڈتا ہے, اگر اسے وجود میں نہ پائے تو رخصت ہو جاتا ہے. علم کی حفاظت عمل کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس چیز کو پیدا کرو. اور آپ دیکھیے کہ دولت کی حفاظت آپ کرتے ہیں, علم آپ کی حفاظت کرتا ہے. دنیا کی دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے, علم کی دولت خرچ کرنے سے زیادہ ہوتی ہے. اب دوبارہ آدم اور ابلیس کا قصہ, کیونکہ ہر جگہ ایک نئے اینگل سے آتا ہے. وَلَقَدْ أَهِتْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ, ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گئے, اور ہم نے ان میں عزم نہ پایا. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. دیکھیے جب سب نے مانا تو اس نے نہ مانا, تو نمایاں ہوا تھا نا, پرومیننٹ ہوا. آپ امیجن کیجئے نا, کسی جگہ نماز ہو رہی ہے, سب سجدے میں گئے ہوئے ہیں اور ایک بندہ بیچ میں کھڑا ہے. تو لکھیے ابلیس کا جو بہت بڑا پرابلم تھا, ٹو بی پرومیننٹ, مجھے نمایاں ہونا ہے. منہ سے نہیں کہہ رہا تھا, اندر چھپی بھی تھی بات, خواہش کی تھی کہ مجھے بس ذرا آگے کر دیں, بڑھا دیں. اچھا اب کیا ہوا, ہوا نمایاں, ہوا نا, اچھا لگ رہا تھا. ایک بڑی خوبصورت تصویر کمپیوٹر کی سکرین پہ آتی ہے کبھی کبھی, ایک پوری باسکٹ ہے خوبصورت قسم کے اورنج, ایسے لگتا ہے جیسے فریش اورنجز, اور اس کے اندر سے ایک اورنج گر کے تو کونے میں گیا ہوا ہے. اس وقت پتا چلتا ہے کہ یہ تصویر کا معنی کیا ہے. یاد رکھیے اگر ابلیس اس وقت اللہ کے حکم کو مان کر سب کے بیچ میں گھل مل جاتا اور وہی کرتا جو سب کر رہے تھے, تو اس طرح راندہ درگاہ نہ ہوتا. آج کے کلچر میں یہ بھی ایک ایکسپوجر ہے, ایکسپوجر چاہیے, دوسرے کے آگے نمایاں ہونا ہے, اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے, اس پر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا, دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو, نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے, لیکن شیطان نے ان کو پھسلا دیا. کہنے لگا آدم, بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ آخر کر دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور آہ راست سے بھٹک گیا. اللہ اکبر. یہاں تک کے واقعے میں چند باتوں کو دیکھیے گا. پہلی بات دیکھیے کہ شیطان پرووک کرتا ہے, ابھارتا ہے, ڈائریکٹ آ کے حکم نہیں دیتا. دل میں ہلکا سا وہ کہنا چاہیے ایک پتھر پھینکتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. سوچ میں ارتعاش پیدا کر دیتا ہے اور پھر کونے میں کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھنا اب اس سوچ نے اس کو اللہ کے حکم سے کتنا دور لے جانا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آدم اور حوا دونوں یہاں موجود تھے. ابلیس نے جو کہا شوہر نے بھی کیا تو بیوی نے بھی کر لیا. دنیا میں بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے, ایک ساتھی غلط کام کرے تو دوسرا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. یہ بہت کم ہوا کہ ایک نیکی کرے تو دوسرا اس کو دیکھ کر نیکی کرنے لگے, لیکن یہ بعد میں ہوتا ہے. کب؟ کچھ عرصہ انتظار کرنے کے بعد. آدم سے بھول ہوئی, عزم پہ پختگی نہ پائی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کیا ڈانٹا؟ نہیں, سمجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا. پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی. خوشخبری ہے خیر اس انسان کے لیے جس سے کوئی گناہ ہو چکا ہے. کبیرہ بھی ہو سکتا ہے, یاد رکھیے. بڑے بڑے بہت سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں. ایک دفعہ کہیے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان جہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب اگر میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا, اور جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. ہائی لائٹ کیجیے, یہ ہیں ہمارے اس حصے کی آیات تدبر. ذرا سا شعور کے ساتھ اس کو سنیے. پہلے میں ایک سوال چھوڑتی ہوں آپ کے ذہنوں کے لیے. اگر آپ کو یا مجھے پتہ چل جائے اگلے سال میں نابینا ہو جاؤں گی, میری آنکھوں کی روشنائی چلی جائے گی, تو مجھے کیسا لگے گا؟ اس آیت میں یہی خبر ہے. آئیے پڑھتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تمہیں آنکھوں والا تھا, یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو انہیں بھلا دیا تھا, اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. اسی طرح حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات کو نہ ماننے والے کو دنیا میں بتلا دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا میں ہدایت سے دور رہے, اللہ نے آخرت میں آنکھوں سے محروم کر دیا. کتنی بڑی سزا ہے. اور یہ جو ہے نا معیشتن دن کا, اس کا نیچے انگلش کا ترجمہ لکھ لیں, ٹینشن والی زندگی. دنک کہتے ہیں تنگی کو, گھٹن, گھبراہٹ. جیسے کوئی لفٹ میں بیٹھتے ہیں تو تنگ ہو جاتے ہیں. آج آپ دیکھیے کہ انسانیت اس کتاب ہدایت سے دور رہ کر تنگیوں کا شکار ہو گئی. خوشی کم ہے, خوشحالی بہت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی روشنی دی آپ کے میرے لیے. اسی کی روشنی میں جائیں گے تو زندگی بھی روشن ہوگی, آپ کی سوچ کھلے گی, اور آخرت میں بھی انشاءاللہ قبر کی روشنی کا یہ ذریعہ بنے گی. پل صراط پہ روشنی بنے گا, یہ بنے گی یہ کتاب. آپ کا میرا اس آیت پہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ اپنے معمولات کو دیکھیں. میری زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے کیا کیا چیز اس کتاب ہدایت کے مطابق ہے اور کون سی اس سے دور ہے؟ آپ نے اس پہ غور کرنا ہے. ایسے ہی سوچ لیں, سپوزڈ صرف, کہ میں اس آیت کو اپنے اوپر کیسے اپلائی کروں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پڑھ کر کبھی بھولنے والا نہ بنائے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. پھر فرمایا پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں. اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے سے ایک بات طے نہ کی کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا چکا ہوتا. پس سے نبی جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے, اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی. اشارتاً 5 نمازوں کے اوقات ہیں اس میں, ڈائریکٹ نہیں ہے. ڈائریکٹ کہاں سے ملیں گے؟ حدیث سے. تو حدیث کو پڑھے بغیر قرآن نہیں سمجھ آتا. پڑھو کیوں نماز, اس کو ہائی لائٹ کیجئے. لعلک ترضیٰ, کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ نماز پڑھو تاکہ اللہ راضی ہو جائے. آج تک یہی سوچتے آئے, اس آیت نے آپ کی میری سوچ بدل دی. لکھیے ذرا اس کو, دیکھیے غور سے, ترجمہ پڑھے. شاید کہ تم راضی ہو جاؤ. یہ ہے اقیم الصلاۃ لذکری, عبادت سے اللہ سے پہلے بندہ راضی ہوتا ہے. तुम राजी होगे से क्या पता चलता है, इबादत आपकी आंखों की ठंडक बनती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुइलत कुर्रतुल आइनी फिस सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई। तो याद रखिए, नमाज जब तक आपकी रजा का जरिया नहीं बनती, वो अल्लाह को भी राजी नहीं करेगी। असल बात क्या है कि आपको मुझे नमाजों का शौक लगाना है। आपकी सिखाई हुई दुआ में एक बड़ी प्यारी दुआ है, जिसमें आपने फरमाया कि अल्लाह, जब दुनिया वाले दुनिया से आंखें ठंडी कर रहे हो, तो मेरी ठंडक तेरी इबादत में रख दे। तो फिर आज नमाज के पीछे पड़ जाए, अपनी नमाजों को सजाएं, संवारें, चमकाएं इस तरह से कि अल्लाह करे कि वो नमाजें हमारे लिए बेहतर हो जाएं। सवाल पैदा होता है, क्यों नमाज में बेचैनियां हैं, क्यों नमाज में तवज्जो इधर उधर? तो उसकी वजह अगली आयत में है, वला तमुद्दन्ना ऐनैक इला मा मत्तअना बिही अज़्वाजम मिन्हुम, और निगाह उठाकर भी ना देखो दुनियावी जिंदगी की शान और शौकत को जो हमने इनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी है। वो तो हमने इन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी हैं, और तेरे रब का दिया हुआ रिस्क हलाल ही बेहतर और पाइंदा तर है। अपने अहलो याल को नमाज की तलकीन करो, फिर वही बात, नमाज की तलकीन, और खुद भी इसके पाबंद रहो। हम तुमसे कोई रिस्क नहीं चाहते, रिस्क तो हम ही तुम्हें दे रहे हैं, और इंजाम की भलाई तकवा ही के लिए है। क्या पता चला कि जहां दुनिया बहुत सज जाती है ना, वहां नमाजों से खुशी चला जाता है। आप भी इस मौके देखिए, मस्जिद के साफ सुथरे प्लेन हॉल में जाकर नमाज पढ़ें, और अपने ड्राइंग रूम में सजे सजाए खूबसूरत टेबल और पर्दों के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ के देखकर जरूर तवज्जो इधर से उधर जाएगी। तो नमाज को दुरुस्त करना है ना, तो हमें थोड़ा सा अपने आप को पाबंद करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें तकवा अता फरमाए। और यहाँ देखिए, दुनिया के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, ज़हरत अल हयात दुनिया, और ज़हरा कहते हैं कली को। ये दुनिया जो है ना, ये अद खिला फूल है, अभी पूरी रानाई तो आपने मैंने देखी कोई नहीं है, वो आखिरत में होगी। अल्लाह कहते हैं, इस कली को देखकर तुम इतने हो गए हो खुश, तो सोचो जब आखिरत में जन्नत का घर देखोगे तो क्या होगा। अल्लाह हमें दुनिया के साथ आखिरत की नेमत भी अता फरमा। वो कहते हैं, ये शख्स अपने रब की तरफ से कोई निशानी यानी मौजज़ा क्यों नहीं लाता, और क्या इसके पास अगले सहीफों की तमाम तालीमात का बयान वाज़ह नहीं आया? अगर हम इसके आने से पहले इनको किसी अजाब से हलाक कर देते, तो फिर यही लोग कहते हैं, हमारे परवरदिगार, तूने हमारे पास कोई रसूल क्यों ना भेजा कि जलील और रुस्वा होने से पहले ही हम तेरी आयात की पैरवी इख्तियार कर लेते। देखिए, अगर नबी ना आते तो लोगों ने ये कहना था, अल्लाह कोई आता तो हमें समझाता, अब आ गया तो लोगों ने क्या हाल किया। अल्लाह उस पर अपने नबी को तसल्ली दे रहे हैं, ऐ नबी इनसे कहो, हर एक इंजामे कार के इंतजार में है, बस तुम भी मुंतजिर रहो, अन करीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन सीधी राह चलने वाले हैं और कौन हिदायत याफ्ता हैं। अल्लाह अकबर, आप इन आयतों से ये अंदाजा लगा लीजिए कि नबी सल्लम के साथ आकर किस किस्म की बातें करते थे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमने इस पूरी सूरत में जो कुछ भी पढ़ा, उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे सूरत तौहा भी पूरी हुई और 16वां पारा भी पूरा हुआ। अल्लाह ताला अमल में हमें आगे बढ़ा दे।